صلي على الرسول. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتي المصرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. فقیر حضرات بھی اپنے پاس آنے والوں کو عام طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کو کہتے ہیں. یہ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سورہ یاسین کی برکات بے پناہ ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا, کم از کم میں اپنی حد تک تو پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی میں نے غور ہی نہیں کیا کہ سورہ یاسین کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے. سورہ یاسین بھی دوسری سورتوں کی طرح سورت ہے, کلام الہی ہے, لیکن اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل کہہ کے پکارا ہے. اگر ہم غور کریں تو سورہ یاسین کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارک آئے ہیں, العزیز و الرحیم, اور پھر آگے جا کے پھر دو اسماء مبارک ہیں اس میں, اور ایک ریپیٹ ہوا ہے العزیز و العلیم. رب تعالیٰ کے اسماء مبارک جہاں بھی ہوں گے ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. رب تعالیٰ کے ہم سبھی جانتے ہیں کہ 99 اسماء مبارک ہیں. اگر اس کے آگے ہم اس کی جز میں چلے جائیں تو ایکسٹینڈڈ نیمز اللہ تعالیٰ کے 350 بن جاتی ہیں. قرآن پاک میں ناموں کا ذکر ہے, لیکن وہ اولیاء اکرام جو بہت بلند مرتبہ پر فائز ہو گئے وہ یہ جانتے ہیں اور اپنے قریبی حلقے میں یہ بات کہہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے نام 99 نہیں بلکہ 100 ہیں. وہ جو ایک نام کہیں تحریر میں نہیں آ رہا وہی اصل میں اس میں اعظم ہے. لیکن اس کا علم بہت بلند مقام پر اگر کوئی ولی اللہ چلا گیا تو وہ اس کے علم میں آ جائے گا. جبکہ کوئی شخص ولایت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے اس پر اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے और वो वली हो जाता है। तो वलायत में सबसे लोएस्ट मर्तबा अख्यार कहलाता है या इमरान कहलाता है, दोनों नाम इस्तेमाल होते हैं उस मर्तबे के लिए। ये लोएस्ट मकाम है वलायत का। तो यहां से उसका हसूल इल्म का सिलसिला जारी होता है, फिर वो इससे ऊपर जब मकामात तय करता चला जाता है तो इल्म उसे उसी कदर वसी हासिल होता जाता है। जब कोई शख्स अपने शेख के पास आने लगता है हसूल इल्म के लिए, तो शेख फिर ऐसे इंसान को अल्लाह का कोई एक आध नाम मुबारक विर्द करने को कह देता है। अब वो कहने को तो सिर्फ रब ताला का एक इसमें मुबारक है, वो मैं ऐसे ही एक नाम ले देता हूं अलबाकियो। अब ये कहने को एक नाम है, लेकिन इसके साथ इसके अनवार बेपनाह हैं। अल्लाह के हर नाम के साथ बेपना अनवार हैं। जब कोई शख्स अल्लाह के नाम के विर्द शुरू कर देता है तो ये अनवार उसकी मदद करते हैं। अगर ये अनवार ना हो तो फिर शैतान ये देख करके एक शख्स नेकी की राह पर चला, उसको मुख्तलिफ चीजें दिखा के उसके दिल में ये डाल देगा कि तुम तो बड़े मकाम पर पहुंच गए, तुम ये बन गए वो बन गए, उसे तकब्बुर का शिकार कराएगा, उससे गलतियां होने लगेंगी और वो उस राह से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वो अनवार हैं तो फिर शैतान इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तो जब आप किसी कामिल शेख से लेते हैं अल्लाह ताला का कोई इस्म, तो वो आपको जब आपका शेख पढ़ने को कुछ कहता है तो उसके साथ उसके अनवार भी आते हैं, उस इस्म मुबारक के अनवार साथ आपके पास आएंगे। तो जब आप उसका विर्द करेंगे तो फिर शैतान करीब नहीं आता, बहका नहीं पाता। अगर शेख कामिल नहीं है तो किताब से पढ़े हुए नाम अस्माए मुबारक में से एक इसमें मुबारक आपको दे देगा, अनवार नहीं होंगे। ये फर्क है कि शेख कामिल के पास और बगैर परखे किसी का को अपना शेख अगर बना लिया तो उसने जो कुछ दिया वो फिर कि जब आप अपने शेख के पास गए और आपने उसको अपनी कैफियत बयान की, अपने मसाइल बयान किए, तो अगर शेख ने ये देखा कि आप दुनियावी मसाइल में मुब्तला हैं और आपकी ख्वाहिश यह है कि दुनियावी मसाइब से निकल जाएं, और उसने कोई इसमें मुबारक आपको विर्द के लिए दिया, तो आपको दुनियावी फायदे हासिल होंगे। लेकिन अगर उसने ये देखा कि आपके अहवाल खराब हैं और उन अहवाल को दुरुस्त होना चाहिए, तो वो जब कोई इसमें मुबारक आपको विर्द करने को देगा तो फिर आपको रूहानी फ्यूज हासिल होंगे। तो शेख की नियत इसके अंदर काम करेगी आपको तमाम उसके फल समेटने में। ये जो औलिया किराम को अस्माए मुबारक पढ़ने को मिल जाते हैं, उनको उसके इनामात मिलते हैं, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि किसी वली अल्लाह को एक, किसी को दो, किसी को चार, किसी को दस, किसी को बीस। जो गौस है, जो अपने मकाम पर पहुंचा है गौस के, जिसके मातहत सात कुतब आ जाएंगे, जो इस मकाम पर गया, उसको 97 अस्माए मुबारक के अनवार हासिल होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, ज़ात पाक है, जिन्हें पूरे 100 के 100 अस्माए मुबारक के अनवार हासिल थे। ये जो अनवार वली अल्लाह को मिलते हैं, इनके मिलने के दो मकाम हैं। एक रूह, मकाम रूह, और एक मकाम सर। मकाम सर से सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ, और किसी को अता नहीं हुआ। वाहिद हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मकाम सर से पूरे 100 के 100 अस्माए मुबारक के अनवार अता हो गए। बाकी सबको मकाम रूह से होते हैं, क्योंकि मकाम सर से अगर अता हो जाए तो तजल्लियात की ताब नहीं ला पाएगा इंसान। पहली बात तो यह है कि उसकी रूह परवास कर जाएगी, और अगर बच जाए तो मजजूब हो जाएगा, फिर होशो हवास में नहीं रहेगा। तो इसलिए औलिया किराम को मकामे रूह से इसके अनवार अता होते हैं। इनके साथ इंसान की जिस्म पर और जहनी कैफियत पर भी होती हैं। अल्लाह का एक नाम मुबारक है, अलमतालो। ये अगर किसी को आता हो तो सारी उम्र वो मुस्कुराता ही रहता है। जब भी देखेंगे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, उसके चेहरे पर एक खुशी का तासुर हर वक्त रहेगा। उसकी चाल ढाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें आपको एक सरखुशी दिखाई देगी। जैसे इंसान खुशी के आलम में चलता है तो उसकी चाल डिफरेंट होती है, गम की हालत में चलता है तो चाल मुख्तलिफ होती है। तो एक सरखुशी का एहसास होता है उसको चलते हुए देख के। उसके अनवार हैं उस पर। हर वली अल्लाह में जब उसको कोई इस्म अता हो जाए और वो उसका वर्द करता रहे एक लंबा अरसा और उसको फतह हासिल हो जाए, इसके आगे फिर 360,000 हिस्से होते हैं, जिसमें से निगाह सिर्फ एक हिस्से को देखती है, बाकी उसका पूरा जिस्म 360,000 अनवार में से एक आंखों का, बाकी 359,000 पूरा जिस्म देख रहा होता है उससे वली अल्लाह का। ये ऐसी रहमत है अल्लाह की खास कि उसके नाम का विर्द अगर किया जाए। लेकिन बात यह है कि शेख कामिल से लिए बगैर ना विर्द किया जाए इसका, क्योंकि वो फिर आपको पूरी तरह से नाप तोल के जान छान फटक करके फिर वो ऐसा हर्फ ऐसा इसमें मुबारक आपको देगा जिससे आपके अहवाल दुरुस्त होंगे, आपकी रूहानी कैफियात दुरुस्त हो जाएंगी, जिससे आपके हिजाबात उठने लगेंगे, आंखें खुलने लगेंगी, वो देगा। सूरह यासीन की कमालात मैंने मुझे जो तजर्बा हुआ वो ये है कि एक बार पढ़ेंगे उसका सवाब भी है, उसके अनवार भी मिलते हैं, उसके असरात भी हासिल होते हैं, उसके समरात भी इंसान को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी तरह अल्लाह हमें तौफीक बख्श दे कि हम नमाज फजर के बाद उसे 3 बार पढ़ सकें इन वन गो इन वन सिटिंग, और नमाज ईशा के बाद हम 5 बार पढ़ सकें उसे, लेकिन इस तरह से कि लेट आवर्स में पढ़ें हम, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम नमाज ईशा में फर्ज बाजमात अदा कर दें मस्जिद में, इसलिए कि बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए हमें। बाकी जो 13 रकात नमाज है वो हम घर पर लेट आवर्स में पढ़ लें, इस तरह से कि हम उस वक्त 13 रकात बकाया पढ़ें कि अगर उसके बाद हमें कुछ तस्बीहात करनी है, तलावत कलाम पाक करनी है, वो करें और 5 बार सूरह यासीन पढ़ लें इन वन गो एट ए स्ट्रेच, तो पढ़ के फौरी तौर पर फिर हम सो जाएं। इसके समरात बहुत होंगे और बड़ी जल्दी उसके समरात हासिल होते हैं। अब इसमें होगा क्या कि जिस आदमी को भी आप ये बताएंगे कि इस तरह पढ़ लो, हर आदमी अगर उसे अल्लाह ने कुछ समझ अता फरमाई है वो तो नहीं आएगा, वरना हर आदमी चला आएगा कि जी मुझे 1 साल हो गया पढ़ते हुए कुछ मिला ही नहीं। तो फिर आदमी अगर उसे याद दिलाए कि 1 साल पहले जब आपने ये पढ़ना शुरू किया था तो आपकी जहनी कैफियत क्या थी, आपकी जिस्मानी कैफियत क्या थी, आपके रवैये क्या थे, क्योंकि इंसानी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज जो है वो एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ है। अगर हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बेस्ड हो नेगेटिव चीजों पर तो हमारी जिस्म से नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, लोग दूर भागते हैं। अगर हमारे एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ पॉजिटिव हो तो हमारी बॉडी से जो वाइब्रेशंस निकलेंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बिल्डअप होगा वो पॉजिटिव होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। तो जब सूरह यासीन इंसान पढ़ता है तो इंसान का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है वो चेंज होने लगता है और लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो जब हम तवज्जो दिलाते हैं कि भाई आपको बहुत कुछ अता हुआ, आपने जब शुरू किया तो आप ये थे, आज आप यहां खड़े हैं, जहनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, सोशली, इकोनॉमिकली, तो आप दोनों का फर्क देखिए, तो फिर उसे एहसास होता है कि एक लंबा रास्ता तय कर आया इंसान, उसको पता नहीं चला। क्योंकि सूरह यासीन की खूबी यह है कि इसके असरात इतने गैर महसूस तरीके पर इंसान पर मरतब होते हैं कि इंसान उसे नोटिस नहीं कर पाता। नोटिस सिर्फ उसी सूरत में करेगा जब वो मवाजना करेगा कि साल पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया था मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। रूहानियत के अंदर प्रॉब्लम यही है कि इंसान इसे गेज नहीं कर पाता, इतना गैर महसूस और इतना स्लोली। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इतना गैर महसूस असर आता है कि इंसान उसे गेज नहीं कर पाता। हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने बड़ा होता है, पैदाइश से लेके हमें पता ही नहीं चलता कि वो इतना बड़ा हो गया, लेकिन अगर कोई हमारा अजीज रिश्तेदार उसे 5 साल के बाद देखे तो फौरन कहता है कि माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला वक्त का। बिल्कुल वही हाल है। तो सूरह यासीन को अगर हम पढ़ना चाहें तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि फजर के बाद 3 बार उसको पढ़ लिया जाए और इशा की नमाज के बाद 5 मर्तबा, तो फिर उसके असरात मिलेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जैसे मैंने अभी कहा कि पढ़ने को देने वाला जो है, जो बताता है कि ये पढ़ो, उसकी अपनी नियत क्या है जब आपको वो पढ़ने को बता रहा है, तो वैसे ही असरात आपको हासिल हो जाएंगे। तो आपके लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आप ये अल्फाज मेरे सुन रहे हैं तो मैं तो नियत का बहुत खोटा हूं, बहुत ही बदनीयत इंसान, तो मेरे बताए से अगर आप पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो तो कुलियतन रूहानी चीजें ही होंगी, दुनिया का वहां कहीं दखल नहीं है। क्योंकि मैं तो दुनिया को कोई चीज मानने को तैयार ही नहीं। किसी साहब ने लिखा है कि सबसे पहले आपको ऐलान खलीफा की आमतरीन जिम्मेदारी की बखूबी अंजाम दही पर बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह ताला इसकी बरकत सबको अता फरमाए, आमीन। इस ऐलान से ये तो वाज़े हो गया कि आप अपना इल्म खुर्रम साहब को अता करेंगे और वो बंदगाने खुदा की खिदमत पर मामूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर शाह साहब, जो लोग अरसे दराज से आपकी शफकत तरबियत से मुस्तफीज हो रहे हैं और किसी न किसी हद तक कुछ न कुछ तरबियत भी हासिल कर चुके, बराए मेहरबानी इसकी वजाहत फरमा दें कि उनका क्या मकाम और दर्जा है, क्योंकि आपने अपनी तकारीर में ज्यादातर खलीफा के हवाले ही से गुफ्तगु फरमाई है। क्या ये दूसरे लोग भी काबिले तस्करा हैं? अगर बात की वजाहत में कमी रह गई हो तो माफ फरमा दीजिएगा। बात यह है कि पाकिस्तान की फौज है, वहां इंसान जब फौज में भर्ती के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो एक वक्त में कोई 250 के करीब नौजवान काकुल भेजे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। वो ट्रेनिंग लेती हैं, ऑलमोस्ट सभी अफसर बन जाते हैं, कोई किस्मत का हारा हुआ हो तो वो एक आध ड्रॉप हो जाए और बात है। एक लंबी चौड़ी फौज कई लाख लोगों पर मुश्तमल होती है, सारे ही अफसरों को मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, उनमें से तकरीबन 260 लोग ब्रिगेडियर बन जाते हैं, 124 के करीब मेजर जनरल बनते हैं और 36 लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं और एक आदमी चीफ बन जाता है। अब क्या इसका मतलब यह है कि चीफ के अलावा सभी बेकार हैं? चीफ के अलावा जितने भी अफसर हैं किसी की कोई पास ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई इज्जत है, ना कोई मकाम है? हरगिज ऐसा नहीं है। जिस इंसान ने जितनी मेहनत की है, जितनी खलूस दिल से उसने परफॉर्म किया है, अपनी ड्यूटीज अदा की हैं, उसके मुताबिक वो ऊपर चढ़ता जाता है। जितनी किसी की लेंथ ऑफ सर्विस है उसके मुताबिक वो ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो दो चीजें वहां कंबाइन हो जाती हैं, एक लेंथ ऑफ सर्विस और दूसरे हसूले इल्म और हसूले तरबियत में उसकी दिलचस्पी और उसको फिर अप्लाई करना प्रैक्टिकल लाइफ में। इस पर वो डिपेंड करता है कि कोई आदमी लेफ्टिनेंट कर्नल के मकाम से ही रिटायर हो गया, कोई आदमी ब्रिगेडियर बनकर रिटायर हो गया, कोई मेजर जनरल, कोई लेफ्टिनेंट जनरल, और एक आदमी टॉप पर चला गया। हर मकाम पर हर इंसान का एक स्टेटस भी है, उसकी एक अथॉरिटी भी है, उसकी पावर्स भी हैं, उसकी अमोल्यूमेंट्स भी हैं, उसकी प्रिविलेजेस भी हैं, सब कुछ उसको उसके मुताबिक मिल रहा होता है। तो जब हम एक फकीर के यहां जाके बैठते हैं तो कौन ये प्रूव करता है कि उस पर बहुत ही खास तवज्जो दी जाए? कौन ये प्रूव करता है कि खास तवज्जो उस पर दी जाए? ये सभी लोग फौज के अफसरों की तरह अपना अपना मकाम रखते हैं, अपना अपना स्टेटस रखते हैं, अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पेक्ट और उसके अमोल्यूमेंट्स, जो तरबियत हासिल करने आए उनको वो मिलता चला जाता है। जिसको खिलाफत दी जाती है, पहली बात, इसमें मर्जी का इख्तियार नहीं होता। अगर मर्जी हो, सवाब दीद हो इंसान की, तो वो सबसे पहले अपने औलाद को नवाजेगा, ये इंसानी फितरत है। बास का दुश्मन को खिलाफत दे दी जाती है, अपने मुर्शिद साहब के पास मैं जाने वाला आखिरी आदमी था, मतलब कहने का मतलब यह है कि कम से सबसे कम टाइम मुझे हुआ था आए हुए, खिलाफत अता हो गई। बहुत चेमगोइयां हुई, वो समझ में आने वाली बात भी थी कि मुझसे बहुत पहले से लोग वहां बैठे थे, खासी चेमगोइयां हुई, लोगों ने ग्रंबल किया, उसने हार्ट बर्निंग हुई, लेकिन ये मुझे अंदाजा नहीं था कि मुर्शिद साहब देना किसी और को चाहते थे और दी मुझे। ये मुर्शिद साहब की बात से अंदाजा एक बार हो गया कि वो बेखुदी के आलम में बैठे थे, आलमन इर्द गिर्द के माहौल से कटे हुए थे बिल्कुल, तो अपने साथ बात कर रहे थे वो, उनको ये एहसास नहीं था कि उनके करीब कोई और लोग भी बैठे हैं, तो अपने ही साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने एक जुमला फरमाया जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि ओहो ये नियत किसी और के लिए थी, खिलाफत मुझे दी गई है। तो अपने आप से बड़े अजीब से लहजे में फरमाने लगे, ये सच है, इल्म वाला और बे इल्म एक बराबर नहीं हो सकते, कुरान में रब ने कहा हुआ है। तो उसको उन्होंने दोहराया कि यह सच है कि इल्म वाला और बे इल्म एक बराबर नहीं हो सकते। तो उससे जरा से मैंने गौर किया तो बात खुल गई कि वो एक और साहब को असल में खिलाफत देना चाहते थे जिनसे उनका प्यार का बहुत था, उसने खिदमत बड़ी की थी, लेकिन वो खिलाफत मुझे मिल गई। कहने का मतलब यह है कि यहां मर्जी नहीं होती है, यहां यह भी नहीं बात कि किसने आपकी ज्यादा खिदमत की है, किसने आपकी देखभाल ज्यादा की है, कुछ नहीं है। उसका मयार ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो तो जिसकी तकदीर में लिखी है वो उसको चली जाती है, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। मैंने एक आपको एग्जाम्पल कोट कर दी, लेकिन उसका फिर भी मतलब ये नहीं होता कि अगर 25 आदमियों की तरबियत शुरू हुई, एक को खिलाफत मिली तो 24 बेकार हो गए। उन्होंने आपको मिसाल दी फौज की, तो जिस जिस मकाम पर जो है वो उसका मकाम भी है, स्टेटस भी है, उसकी अथॉरिटी भी है, उसकी पावर्स भी हैं, उसके अमालूमेंट्स भी हैं, उसके इनामात भी हैं, सम्राट भी हैं, हर चीज है उसकी, वो उसी हिसाब से है। किसी साहब ने सवाल पूछा कि अल्लाह पाक की जात को सिंसियर एटीट्यूड कितना पसंद है। अगर अक्सर औकात हम दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी सिंसियरिटी का जवाब हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं मिलता, ऐसा क्यों है और ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? रब ताला के बारे में एक चीज कही जाती है और बड़ी सही है वो, कि रब नियतों को देखता है, वो सिंसियरिटी ही की बात है। तो रब की तो नजर रहती ही दिल पर है कि इंसान के दिल में क्या है। मैं जुबान से क्या कह रहा हूं, इंसान तो उसके धोखे में आ जाएगा, लेकिन रब नहीं आता। रब दिलों के हाल जानता है, वो मेरी नियतों को जानता है, वो जानता है कि मेरी असल नियत क्या है। तो रब तो देखता ही सिर्फ सिंसियरिटी टू पर्पज है, लेकिन रब के मामलात को दुनिया के मामलात पर महमूल नहीं किया जा सकता। रब रब है, उसके मामलात उसके हैं। ये जो आपने फरमाया कि दुनिया में इंसान की सिंसियरिटी का जवाब नहीं मिलता, हम हमेशा ठोकर खा जाएंगे जब हम अपनी नेकी का बदला इंसान से चाहेंगे, जब हम अपनी सिंसियरिटी का जवाब इंसान से चाहेंगे। अगर हमने ये सोचा कि मेरा हर फेल रब ताला के लिए है, मैं हर काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरे रब का हुक्म है, मैं हर काम इसलिए कर रहा हूं कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि इसका नतीजा क्या मिलेगा, इसका अजर क्या मिलेगा, ये दुनिया में मेरा काम मकबूल भी होगा या नहीं होगा, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मेरे रब ने फरमाया है कि करो और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यकीन कीजिए कि उसका अजर कई गुना बढ़कर इसी दुनिया में अता हो जाता है और अक्सर उस जगह से नहीं होगा जहां आपने नेकी की या सिंसेरिटी है आपकी, दूसरी जगहों से हो जाएगा। तो रब कई गुना बढ़ाकर दे देता है। आप लोग अपनी जिंदगी को रिव्यू कर लीजिए, जब से होश संभाली उस वक्त से मौजूदा उम्र तक, तो ये हैरानकुन चीज सामने आएगी कि जब भी हमने कोई काम सिर्फ इसलिए किया कि मेरे रब का हुक्म है या ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसके बाद हम भूल गए, तो उसका अजर कई गुना बढ़कर किसी और जगह से हमें फौरन आ गया। बात सिर्फ इतनी है, और अगर जान की अमान पाऊं तो ये कर्ज ये कर दूं कि जहां बदले की तवक्को है वो सिंसियरिटी नहीं है, वो खुदगर्जी है। किसी साहब ने फरमाया है कि वो तसव्वुफ की राह पर चलना चाहते हैं लेकिन गुनाहों और ईमान की कमजोरी की वजह से इस राह पर चल नहीं पा रहे हैं। बात यह है कि आपके सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, अपने अंदर से मिल जाएगा। आपने अगर औलिया इकराम के बारे में पढ़ा है तो आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत औलिया इकराम की वो है जो अपने जमाने के नामी गिरामी चोर डाकू और बदमाश थे, अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और उन्हें राह हिदायत दिखा दी और वो ऐसे फिर वहां से पलटे कि वो अल्लाह के होके रह गए और वलायत के बड़े बुलंद मकाम पर गए। हमें रब ताला के गफूर रहीम होने पर ईमान होना चाहिए कि रब बड़ा गफूर रहीम है, वो इस इंतजार में है कि मेरा कोई बंदा मुझसे माफी का तलबगार हो और मैं उसे माफ कर दूं, कोई बंदा ताइब हो और मैं उसको राह हिदायत दिखा दूं। वो इस इंतजार में है, वो इस इंतजार में बिल्कुल नहीं है कि कोई बंदा मेरे हाथ आए कि मैं उसे जहन्नम में डालूं। उसकी शान ही है कि वो मुझ जैसे गुनाहगार बंदों को सीने से लगा के रखता है, बशर्ते के सीने से लगने वाला नियत रखता हो सीने से लगने की, गुनाहों से बचा लेता है, गुज़श्ता गुनाहों को माफ फरमा देता है। सिर्फ एक जुबान हिलने की देर है कि या अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं, या अल्लाह आइंदा के लिए तू मुझे इस्तकामत बख्श दे कि मैं अपनी तौबा पर कायम रह सकूं। वलायत दो कदम पर है, एक बार इंसान ताइब हो जाए, वलायत दो कदम पर है। अब ये जरा सी अगर मैं हमेशा एक चीज अर्ज करता रहता हूं कि देखिए आपकी जाती मामलात मुझे तकलीफ होती है, मामलात तो जाती आपके हैं, अगर मैं उन्हें पब्लिकली बयान करूंगा तो मुझे अंदर से तकलीफ होती है। आपकी प्राइवेसी का एहतराम किया जाना चाहिए, मेरे मजहब में ये लिखा है, मैं अपने मजहब की बात कर रहा हूं कि हर इंसान की जाती जिंदगी और उसकी प्राइवेसी उसका एहतराम किया जाना चाहिए। जब आप अपने जाती मामलात इस तरह पब्लिकली बयान करने लगते हैं तो मेरे नजदीक ये इंसान की तौहीन है कि आप हम अपने दुख अपने ही जैसे एक इंसान के सामने बयान कर रहे हैं, ये इंसान की तौहीन है। मैं दुआ के लिए बैठता हूं, आप आ जाइए। मुझे मालूम है कि लोगों को ये तकलीफ होती है कि वक्त बहुत कम मिलता है। यकीन जानिए कि जितना वक्त मिलता है वो जरूरत से दो गुना तीन गुना ज्यादा है। मेरा जिंदगी का प्रॉब्लम यह है कि मैं अगर किसी वली अल्लाह के पास जाता हूं तो मैं जाके उनसे कहता हूं जी अस्सलाम वालेकुम, और उसके साथ ही मैं 1857 की जंग आजादी से अपने खानदानी तारीख बयान करने लगता हूं। और करते करते आखिर पर मेरी तान इस बात पर आके टूटती है कि साहब बड़ी तकलीफ में हूं, बड़ी बड़ी मुश्किल में हूं, आप खुदा के लिए मेरी मदद कर दें, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दें। मेरी बिल्ली सुबह उठ के तीन बार मियाऊं करती थी, अब दो बार करती है, अल्लाह के लिए दुआ कर दें, मैं बड़ा मुश्किल में हूं। हमारी प्रॉब्लम वहां आ जाएगी। अगर हम ये सीख लें कि किसी फकीर के पास गए, अगर मैं जाऊं तो मैं तो मेरा रवैया अब भी यही है, मैं मजारों पे जाता हूं, यहां से 5,000 मील दूर 4,000 मील दूर गया कई कई घंटे की फ्लाइट करके, अस्सलाम वालेकुम, हाजिर खिदमत हूं, अल्लाह के हजूर दुआ फरमाइए, अस्सलाम वालेकुम, गया किसी भी मजार पे, वो 1.5 मिनट इसलिए मुझे लग जाता कि मैंने फातिहा पढ़नी होती, अगर फातिहा ना पढ़नी हो तो हार्डली 5 सेकंड की हाजिरी है मेरी, 6 सेकंड की, अल्हम्दुलिल्लाह वो लाद लदा के भेजते हैं मुझे, कभी खाली हाथ किसी ने नहीं लौटाया, बहुत कुछ अता करके भेज देते हैं। मैंने यहां किस्सा सुनाया था कि मेरे मुर्शद साहब ने, मैं टाइम हो गया लेकिन मैं आपकी इजाजत से आधा मिनट ले लूंगा, बड़ी तेजी से सुना दूं, मैं और मेरे मुर्शद साहब तन्हा हम बैठे थे, दोनों बात कर रहे थे, मुर्शद साहब फरमा रहे थे, फरमाते हुए मुझे कहने लगे कि मियां ये मन्नतों का क्या है, ये तो ये मैले कपड़े के ढेरों से पूरी हो जाती हैं, वहां उनके मैले कपड़े पड़े हुए थे, ढेर थे कि वो तो इस ढेर से पूरे मन्नतें हो जाती हैं। तुम वो पढ़ते जाओ जो तुम्हें बताया है, मंजिल को पहुंचोगे, फिर वो तुम पढ़ो भी क्यों, हमारा नाम ही जपे जाओ मंजिल को जा पहुंचोगे, हमारा नाम भी क्यों जपो, हमसे मोहब्बत किए जाओ मंजिल को पहुंचोगे, ये असलियत है। बात यह है कि इस मौजू पे इंशाल्लाह अगर मैं जिंदा रहा अगली इतवार तक, तो अगली इतवार मैं जो ऐसी लायानी बातें बेमानी गुफ्तगू करता रहता हूं वो नहीं करूंगा, बल्कि इसी मौजू पे बात करेंगे कि दुआ में अगर किसी फकीर के सामने 10 सेकंड हाजिरी हो और 10 घंटे हो तो फर्क क्या होता है। अगली इतवार तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है आपसे, अस्सलामु अलैकुम।